पुरुषार्थी भाई बहनों के लिए आज का जो टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि ये संपूर्ण बनने की मंजिल तो यही है, जब तक हमारे में बेहद का वैराग्य ना आवे तब तक तो मंजिल की नजदीक नहीं पहुंच सकते। तो बाबा ने ऐसी युक्तियां तो बहुत बताई है संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति में बाबा ने कहा है कि बहुत सेवा में बिजी हो जा। लेकिन पहले भी बताया कि जब सेवा में बिजी हो जाते हैं तो सेवा में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होती है, और सेवा में कंपटीशन होने से हमारी वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। आगे जाने का, समझाने का, सिखाने का, ये भी कंपटीशन बहुत रहती है। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बेहद की सेवा माना कि सकस देने की सेवा, लेकिन सकस देने की सेवा भी कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट भी है और करने के लिए जमा का खाता भी चाहिए। दूसरा है कि व्यर्थ भी खत्म हो जाए, क्योंकि सकस देते देते कोई ऐसे संकल्प भी आए तो नीचे उतर जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि एक 3496 की मुरली के सार है, बेहद में सकस। तो कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। मैं मेरी छोटा सा एक अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं जब अहमदाबाद में थी तो अहमदाबाद में मैं सर्विस भी करती थी और सेंटर पर भी रहती थी। तो सेंटर पर ऐसा होता था कि बहुत 25 भाई बहने थे, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो मुझे दीदी कहती थी कि आपको 3-4 दिन की छुट्टियां लेने की या 2 दिन की छुट्टी लेने की, 1 दिन की छुट्टी लेने की, और आपको ये घर में ही रहना है, मतलब कि सेंटर में रहना है। और सभी भाई बहनों को कहते थे कि आप जहाँ भी प्रोग्राम है ना वहाँ आपको जाना है। तो पहले मैं छोटी उम्र, मतलब छोटी ऐसे तो नहीं थी, 22 साल की तो थी, लेकिन मुझे बहुत फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही सेंटर पे ही रखते हैं और सब फिर वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन दीदी मुझे स्ट्रिक्टली कहती थी कि नहीं, तुमको यहाँ ही रहना है और बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल भाग के देखने नहीं आना है। तो मुझे थोड़ा ऐसा होता था, तो किसको बताऊं, क्योंकि दीदी ही बड़ी थी तो सब तो जाते थे और मैं छुट्टी भी लेती थी और मुझे सेंटर पर भी रहना होता था। तो एक बार मुझे है ना, तो ऐसा थोड़ा ये हुआ, तो दादी जानकी जी आए थे उस समय, तो मैंने कहा कि दादी जी मुझे है ना तो हर बार ही ऐसा होता है। तो दादी जी ने मुझे समझाया कि देखो एक टेलीफोन का है, टेलेक्स का है, तो सब नहीं कर सकते है ना, और ऐसे ऐसे फोन आएगा तो जॉब देने का तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खाना बनाने वाले परोसने वाले तो बहुत होते हैं ना, इसलिए तुम ये बहुत इम्पोर्टेंट, तुम्हारे कोई सेवा करनी है, तुम अभी संकल्प नहीं चलाओ। तो मेरा संकल्प थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया और जबरदस्ती से मैं नहीं जाती थी, लेकिन दुख थोड़ा थोड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे बाबा ने हमको नियम बनाया, तो शुरुआत में हम सभी को पता है कि बहुत थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अभी नेचुरल हो गया, तो ऐसा मुझे रहते रहते नेचुरल हो गया था। अभी कोई भी प्रोग्राम हो तो मैंने अंदर से निश्चय कर लिया कि जाना ही नहीं है। तो लेकिन हमारे वहाँ 4 लोग ऐसे थे जिसको दीदी कहती थी घर में ही रहना है, सेंटर में ही रहना है। तो हमारे एक बहन थी ना, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना देती थी, कहती है ब्रह्म भोजन है वहाँ उससे भी ज्यादा अच्छा, हम जल्दी जल्दी भोजन कर लेंगे, और वो लोग तो देखो 2:30 बजे तक भी उनका भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसी ऐसी बात होती थी, तो हमारे को वो भी बहुत अच्छी रीति से पालना देती थी। लेकिन ये जो पुरुषार्थ है ना, हमने कहीं बाहर का प्रोग्राम नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस मेहनत या तो ये पुरुषार्थ जो किया वो नेचुरल थोड़ा थोड़ा होने लगा, लेकिन बाबा ने हमको छोड़ा नहीं। उस इसने 25 लोगों में से हमको ही उठाया, जबकि हमारा कोई प्लान ही नहीं था मधुबन में आने का, क्योंकि वो हम सुख से ही मतलब अच्छी रीति से ही रह रहे थे। एक संकल्प मात्र नहीं था कि मधुबन में आएंगे, और दादी ने हमको यहाँ बुला लिया। लेकिन यहाँ आने के बाद जब ज्ञान स्वरूप में प्रोग्राम होता था, कहीं भी प्रोग्राम होता था, ऊपर ओम शांति भवन में होता था, तो हम नहीं जाते थे। दीदी कहती, दादी कहती थी, सब कहते थे यहाँ इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो ये तो यहाँ से अब बंद करके नहीं जा सकते हैं। तो हम नहीं जाते थे ज्ञान सरोवर। फिर ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में भी ऐसे नहीं जाते, लेकिन दादी ने हमको एक बार बुलाया, इधर आओ तुम घूमने जाती हो। नहीं दादी, यहाँ आते हैं ना तो हम नहीं जाते हैं। दादी नहीं नहीं जाने का, ज्ञान सरोवर जाती हूँ, प्रोग्राम होता है, मेरे को नहीं 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 आपको जाना है। तो हमको ऐसा लगा कि देखो बाबा ने हमको ऐसी जगह पर भेजा, हमने एक भी प्रोग्राम यहाँ आने के बाद ऐसे मिस नहीं किया। और बाबा के प्रोग्राम में जब हमको आना होता था ना अहमदाबाद से, तो ऐसा होता था, दीदी कहती है कि 7 बजे की जो ट्रेन होती है इसमें जाने का है, बाबा को मिलने का है, और उसी दिन आपको वापिस आ जाने का है। सुबह में कितना भी बाबा तो रहता था, लेकिन हमको जैसे बाबा की मुरली पूरी होती थी तो हमारे ग्रुप होता था, हमको जाना ही है और एक ही बार मिलना होता था, क्योंकि सबका नंबर लगता था। तो हमने सोचा हमने कितनी बड़ी लॉटरी मिली यहाँ आने के बाद। तो जितना जितना हमने मतलब कि जैसे भी जबरदस्ती से जो भी हमने किया वो नेचुरल जैसा हो गया। और अब भी आज भी हमको कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमको अंदर से खींचनी होती कि हम जाएंगे देखेंगे। तो ये इस प्रकार थोड़ा जबरदस्ती से थोड़ा स्ट्रिक्टली ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा वैराग तो आ ही जाता है। तो बाबा ने कहा कि बेहद में सकाश, तो कई बच्चे अपने से पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है, लोग देखते हैं यहाँ, लोगों को भी ऐसा लगता है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके जीवन में कितनी तपस्या उन्होंने शुरुआत में की है, कितनी मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत के बाद उसको मिले हैं। लेकिन अभी अभी आने वाले को लगता है कि देखो ये कैसे रह रहे हैं, इनको कितना बड़ा सुविधाएं मिली हैं, तो इसलिए दिखाई देता नहीं। लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि ये सकास देने की सेवा तो निरंतर कर सकते हो, इनमें तबीयत की बात भी नहीं है, समय की बात भी नहीं है, ये सहज हो जाती है। तो दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात को भी, जैसे आंख खोली और बेहद की सकास देने की सेवा होती रही। ब्रह्मा बाबा के जीवन में तो मतलब कि शुरुआत में भी जब ही ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने प्रवेश किया, उसके पहले तो बाबा कितना अच्छी रीति से रहता था, जवाहरात का व्यापारी था, तो राजा महाराजाओं से मिलना होता था, तो उनकी बहुत ही वैल्यू भी दुनिया में भी थी। बाबा ने प्रवेश किया और बाबा का एक आदेश अंदर से हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तन मन धन, और उस समय इतना बड़ा व्यापार करते हुए भी जब बाबा ने प्रवेशता की तो एकदम उसमें वैराग्य वृत्ति आ गई, वो भी नहीं देखा। और आपको हम सबको पता है कि बाबा ने कैसे कहा कि अभी हमको है ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे वो पार्टनर को भी बोल दिया कि आपको जितना देना हो, तो और वो जो भी मिला वो भी मतलब कि यज्ञ में लगा दिया। तो कभी भी उनको संकल्प भी नहीं आया, और लगाने के बाद भी बाबा ने एक बात और बताई कि ट्रस्ट जो ट्रस्ट बनाया था उसमें बाबा ने बहनों का नाम दिया, बड़ी बड़ी कोई भाइयों का नाम ट्रस्ट में नहीं दिया, बहनों को समर्पण कर दिया। जो बहनें इतनी पढ़े हुए उस समय भी नहीं थी तो भी बाबा ने ट्रस्ट में बहनों का नाम दे दिया, और उस रीति ट्रस्टी बन करके जो भी था वो मतलब कि यज्ञ में समर्पित कर दिया। तो वो कितनी बड़ी बात थी, उनके आगे तो कोई सैंपल नहीं था, हमारे समय बहुत सैंपल थे। ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा की बातें बहुत सुनकर कैसा ही लगता है जैसे हम भी उनको देखा है। हमें ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि हमने उनको नहीं देखा है। जीवन की पार बातें सुनते सुनते हमारे जीवन में वो बातें भी देखने को अनुभव में आती है। दूसरी बातें हैं कि दादियां जो है, हमको दादियों को तो देखा है, और उसमें भी प्रकाशमणि दादी जी को हमने वहां से तो दूर दूर से देखना होता था, तो बस नहीं होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद हम रोज जाते थे दादी जी के पास, तो हमें वो अनुभव में आया कि दादी कितनी, इसका कमरे में कितनी सिंपल सब कुछ था, और कपड़े भी इतने खास नहीं रखते थे जितना आज हम रखते हैं, इतना कपड़े भी वो नहीं रखते थे। और एक बार क्या हुआ कि गद्दा उसको लाना था, तो उनके साथ दो पहने रहती थी, वो कहती दादी ये गद्दा अच्छा नहीं है, हम है ना लंदन से मंगवाएंगे, तो दादी ने बोला नहीं 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 यहाँ ठीक है मेरा तो यही चलेगा। तो जो मतलब कि जो भी चीज वस्तु ये आती थी तो दादी सोचती थी कि अगर मैं ये यूज करूंगी तो लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो एक बार गुलझर दादी के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक सोफा आया था, तो मुन्नी बहन ने बोला कि दादी गुलझर के लिए भी एक बहुत अच्छा सोफा है, हम भी लाएंगे। और तो दादी ने बोला नहीं नहीं सब मुझे फॉलो करते हैं, इसलिए तुम मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं लाओ, क्योंकि यहाँ दादी के पास देखेंगे और सब सेंटर वाले देखेंगे तो दादी के वहाँ आ गए, हम भी यहाँ लाएंगे, तो वहाँ दादी का कमरा बनाएंगे, दादी के कमरे में बड़ी बड़ी चीजें रखेंगे। तो दादी कहती है तीन ऐसे नहीं करो, दादी के बाथरूम में हमने देखा कि एक ही साबुन रहता था दादी के बॉक्स में, तो ये मुन्नी बहन और मोहिनी बहन तो थे उनके वहाँ साबुन रहता था, तो मोहिनी बहन कहती थी दादी दो तीन प्रकार के होने चाहिए, तो कि नहीं नहीं देखो सब बाथरूम में भी देखते हैं, सब जगह पे देखते हैं, दादी को फॉलो करेंगे, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करो। तो कहते थे नहीं गुलझर दादी भी उनका कमरे में भी देखो, तो कहते नहीं नहीं वो गुलझर दादी को फॉलो करें वो नहीं, लेकिन दादी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने देखा जहाँ भी हमने देखा वहाँ दादी का कमरा जरूर होता है सभी सेंटरों में। तो दादी ने अपने जीवन में इतनी सिंपल थे दादी। और एक बार मुझे ये याद आया कि दादी यहाँ इनकम टैक्स वाले आए थे एक बार, तो सिरोही से फोन आया इनकम टैक्स वाले आते हैं तो सब देखेंगे, तो वो आए तो बोला कि आपके जो हेड है उसका कमरा हमको देखना है। तो आए तो देखा कबोर्ड, देखा इसमें कपड़े थे, फिर वो पलंग में देखा तो उसमें भी तो कपड़े थे, गद्दे थे, बोला यही है, बोला हाँ यही है। तो मीटिंग रूम देखना था, मीटिंग रूम में देखा तो मीटिंग रूम में तो फोटो के सिवाय और कुछ भी नहीं था, तो बोला ये तो ये आपके हेड के कमरे, बोला हाँ हाँ वही है। उनको इतना आश्चर्य लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, दादी के कमरे में जो फोन था ना वो भी इतना सिंपल था, जो सबके पास तो उस समय मतलब बड़े बड़े फोन थे, तो दादी के कमरे में छोटा फोन था, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बोला नहीं यही है, यही कमरा है, दूसरा तो कोई कमरा ही नहीं। तो उन लोगों को भी इतना आश्चर्य लग गया। तो यहाँ हमने ये देखा कि दादियों की जो त्याग तपस्या वैराग्य भावना कितनी थी। दादी चंद्रमणि दादी उस समय दादी ने उसको बुला लिया था कि यहाँ आना, सब कुछ छोड़ के वो इंद्रप्रस्थ में रहने लगी थी, तो इंद्रप्रस्थ में एक ही कमरा था दादी का, वो जो अभी दादी जानकी जी रहते हैं ना वो कमरे में, बाजू वाला कमरा और किसी का था। तो दादी जी वहाँ है ना, तो दोपहर में बैठती थी और दोपहर में बैठ करके पत्र पुष्प भी वहाँ रहता था, और ज्ञानामृत कभी मिस नहीं किया है। हम कभी कभी चाहते थे दादी स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाना है तो हमको सिखाओ, दादी के बोले बैठ जाओ इधर, इतना सिंपल रीति से, मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं अभी नहीं आओ ये सब। और दादी का एक अमृत वेले का नियम इतना पक्का था कि दादी 4:45 बजे आ जाती थी और 4:30 बजे उठती थी, क्योंकि उस समय है ना फोन बहुत सस्ता होता था सुबह में, तो मुझे कहती थी तो 4:30 बजे घड़ी में तो मेरे साथ साथ चलना शुरू कर देना। तो मैं ऑफिस में आती थी, मेरे को विजय बहन को लेना, बोला नहीं नहीं उनका तो कोई काम नहीं है ये फोन में, तो मैं तुम मुझे जोड़ के देना और मैं सब बात करूंगा। तो एक तो फिर आ जाते थे, फिर मैं उनको छोड़ने जाती थी कमरे में, तो मैं कहती दादी आपका कपड़ा मैं रख दूं, बोला नहीं नहीं वो तो मैं ही करूंगी, विजय बहन को बोला नहीं नहीं मैं ही करूंगी। तो कहने का मतलब कितना उन लोगों ने लोगों से सेवा भी इतनी नहीं ली है। तो इन ये सब सैंपल हमारे सामने है। तो सारे दिन हम देखते थे कि जब भी बैठते थे तो वो है ना, तो जब भी होते थे कोई वेस्ट टाइम ही नहीं होता था उनके पास, जो भी देखे तभी पढ़ने होते, पढ़ते ही रहते थे। और एक शांतामणि दादी के पास हम जाते थे, उनकी कितने भी प्रोग्राम होते थे वो शांति से बैठी रहती थी। हम बोलते दादी बाहर है ना, इतना अच्छा प्रोग्राम चला। बोला नहीं नहीं वो मुझे दादी बुलाएगी तो मैं जाऊंगी, मुझे तो यहाँ ठीक है। और दादी शांति, शांतामणि दादी का कमरा तो हमारी ऑफिस है ना, उसका आधा ही था, आधा ही आप समझो। और वो भोरी दादी वो जो वहां अंदर की साइड में था, और क्या मुझे ऐसा कहती थी, तुम मुझे चांदा मामा ला के देगी। चांदा मामा दादी आपको ये तो क्या? हाँ मैंने छोटे छोटे परियों की कहानी अच्छी लगती है। तो मतलब कितना सिंपल थे वो लोग। एक बार उनका हाथ को फ्रैक्चर हो गया ना, तभी उसको 11 एक नीचे एक नंबर में दिया था, तो हम जाते थे दादी के पास। तो दादी मेरे को आपको दर्द होता है? बोला नहीं ये तो ये अपना काम करता है, मैं अपना काम करती हूँ, एक हाथ से मैं मतलब पढ़ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। तो इतना अंडरग्राउंड रहती थी कि कोई भी प्रोग्राम होता था, कभी भी हमने उसके चेहरे पर ऐसा नहीं देखा कि उसको कोई इच्छा होगी मैं भी पासन करूं, मैं भी इतना बड़ा प्रोग्राम है इन्वॉल्व हो जाऊं। तो वो उनकी एक बहुत अंदर की तपस्या थी। तो इस सब दादियों को हम देखते थे तो हमको लगता था कि देखो इनको जरा भी संकल्प नहीं चल। एक और एक बार है तो नीलू बहन ने मुझे बोला कि ये दादी है ना उसको घुमाना है शांति स्तंभ पर। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं दादी को दो चक्कर लगा रही थी, तो वहां पहले कांच नहीं था इंद्रप्रस्थ में, ऐसे खुला था। तो वहां सभी दादियां बैठी थी, तो मैंने देखा एक गुलजार दादी नहीं है और ये सब दादियां तो बैठी है, मीटिंग होती होंगी। तो मैं दादी को घुमाते घुमाते उधर देखती रहती थी। तो मैंने बोला दादी आपको है ना तो वहां जाना चाहिए ना, क्योंकि आप देखो आपकी कुर्सी खाली लगती है। तो कहती नहीं नहीं मेरे को जरूरत होंगी ना, दादी बुला लगी, मुझे भी नहीं जाना। तो मैंने देखा देखो इनको कितना ये था, और रिस्पेक्ट भी एक दूसरे के प्रति इतना था उनको, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही जैसे माला के मनके कैसे होते हैं वो हमने देखा, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और जरा भी ये नहीं था। तो ये सब मतलब कि बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसी जब स्थिति हमारी हो, ऐसी स्थिति कितनी। और हमने यहाँ ये भी देखा कि जब भी यज्ञ में बहुत बड़े बड़े जब भी वो लोग जब भी आए उन्होंने दिया, उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया, लेकिन कई माताएं जो थी आज भी वो माताएं जो जिन्होंने त्याग बहुत किया था, यज्ञ में बहुत दिया था, लेकिन यज्ञ में आने के बाद क्या हुआ कि उनको अगर कोई भी चीज कम मिलती थी ना तो उसको तुरंत ही याद आता था। अब आज यज्ञ में भी हमें वैराग्य वृत्ति की जब बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं करती हूँ कि जब ये हॉस्पिटल में प्रोग्राम होता है जो हमको बुलाते हैं उसमें गिफ्ट देते हैं, तो उस गिफ्ट बड़ी गिफ्ट तो होती नहीं है, लेकिन लोगों को अंदर से होता है कि हमारी ये मिस हो जाएगी, दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो भले कितना भी त्याग किया लेकिन अंदर का जो कैसा रहता है, इच्छाएं रहती है। या हमको कोई भी चीज देते हैं ना तो कोई रह जाता है ना तो उसको अंदर से बहुत संकल्प चलता है कि छोटी छोटी भी चीज क्यों ना हो। तो ये सब हमारा फाउंडेशन में जैसे कि कोई कमी रह गई ऐसा लगता है। तो वैराग्य की बातें हैं लेकिन छोटी छोटी बातों से अगर हम थोड़ा अभ्यास कर ले ना तो बड़ी वैराग्य की वृद्धि हो सकती है। तो अभी पढ़ती जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात को भी जैसे आंख खोली और बेहद की सकस देने की सेवा होती रही, तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करे ये करे ये प्लान तो बनाते हो लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकास देंगे तो नस्तिक वाले तो ऑटोमेटिक सकास लेते रहेंगे। इस बेहद की सकास देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी दूसरी जो मुरली है उसमें 28 नवंबर की है, 28 नवंबर 97। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। बाप बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, इस समय को शिक्षक बनाना है, क्योंकि समय जब आएगा हम बन जाएंगे ऐसे समझते हैं, टाइम आएगा ना तो हो जाएगा। तो बाबा कहते सब होने वाला नहीं है, जब हम अभी से थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ करते करते हम बनेंगे। इस समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाता है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्मा बदलेगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचिता हो। समय रचना है तो हे रचिता आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा, आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, तन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा कि बाबा का रथ है, मेरा शरीर है ही नहीं, बाबा का रथ है और बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य था, मन तो मनमना भाव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है, धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति एक रुपये की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। अभी मुझे एक बात याद आती है कि यहाँ है ना, जब भी नीचे कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों में जाना है। पहले तो बाबा गाड़ियां यहाँ से देते थे, सब जाते थे, अभी ऐसा कहते हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों में प्रोग्राम हो तो जाना। तो अभी हमारे पास गाड़ी नहीं, तो हम कहते हैं कि देखो हम नहीं जा रहे हैं, तो हमारा ये तो त्याग थोड़ी है क्योंकि है ही नहीं, बाबा कहते साधन ही नहीं है, तो फिर कहते हैं कि भाई हम साधन ही नहीं है हमारे पास कोई भी प्रकार का। नहीं, लेकिन साधन की बात अलग है ना, कि हमारे पास साधन है तो जाओ, नहीं है तो हमारे पास है ही नहीं, तो बाबा कहते हैं कि किसके पास है ही नहीं, तो कहते हैं हम वैराग्य में रहे, वैराग्य में रहे, वो नहीं है, है साधन बहुत, और कहे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो साधन अगर दूसरे को दे तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास साधन ही नहीं है, कोई भी चीज ही नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, अब चलो व्हाट्सएप नहीं है, तो हम कहेंगे देखो ये लोग कितना कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो फिर वो तो त्याग नहीं है ना, वैराग्य भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है नहीं, बाबा ने कहा कि अभी जैसे जैसे समय आता है ना, वैसे वैसे प्रकृति के साधन भी मिलते, दासी बनती जाती है, लेकिन अगर हमको जो भी कोई व्यक्ति देता है और हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम प्रकृति के मालिक तो नहीं बने, दासी बन गए। नहीं, लेकिन अंदर से इच्छा तो होती है ना कि चलो ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैराग्य अंदर का जो होता है ना, अलग प्रकार का होता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो तपस्या करने वाले कोई जो निकले थे शुरुआत में, जो राजा जो तपस्या करते थे, तो उनको है ना, तो कुछ न कुछ कभी किसी के जीवन में तकलीफें होती हैं, तो वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, फिर घर वाले याद आते। लेकिन जो पहले के समय में जो राजाएं थे, वो भी तपस्या करने के लिए चले जाते थे, तो कुछ न कुछ तकलीफ होती थी, या किसी को एकदम धोखा किसी ने दे दिया तो वैराग्य आ जाएगा कि बस अब तो हम जाएंगे, फिर थोड़े टाइम में वैराग्य खत्म हो जाएगा तो प्यार सबका फिर हो जाएगा। तो ये तो हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये सारे थे सारे घर को तो छोड़ करके हम यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये भी देखा है कि ये सोने की जंजीर बहुत अच्छी लगती है, सूक्ष्म जंजीर होती है ना, उसमें छूट नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक हमारी इच्छाएं होती है, हम इस लगाव में झुकाव में थोड़े थोड़े रहते हैं, तो हम कभी भी वैरागी नहीं बन सकते हैं। तो वो जो आपने देखा होगा कि जो महा धर्म स्थापक लोग आते हैं तो उसकी आंखें देखो कैसी है, दुनिया में नहीं देखते हैं ऐसे, और बहुत बंद भी नहीं खुली भी नहीं, बस उसको अंदर से ऐसा कि एक ही बाबा दिखाई दे। तो हमको एक ही बाबा दिखाई दे, मतलब एक ही भगवान के कार्य के लिए आए हैं, तो उनके सिवाय उनके कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है, तभी तो इतने महान बने। कितना भी उन्होंने सहन किया लेकिन किसके लिए किया, उसको अपनी आंखों में रखा। तो हमको तो इतना बड़ा बाबा मिला है, तो इतना बड़ा बाबा मिला है, अपना जीवन बना रहा है। तो बाबा कहता है कि आज भी कहा कि आपने तो वायदा किया था कि जब आप आओगे तो हम कुर्बान हो जाएंगे। हम कहाँ इतने कुर्बान हुए हैं, हमें भी इधर उधर की चीजें बीजे तो खींचती रहती है। तो मतलब कि कहने का मतलब कि हमें कितना मतलब कि अपने हमारा तो 30 साल हो गया, तो अभी भी हमको होता रहता है, तो होना नहीं चाहिए। बाबा तो 30 साल में संपूर्ण बन गए जबकि तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधन लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, वस्त्र तक भी एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया, बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। तो बाबा इतना सिंपल है, तो उसकी गाथाएं हैं, मतलब कि लोग जो आते हैं तो झोपड़ी बताते वो बताते हैं और कहते हैं देखो ये बाबा रहते थे, मतलब कि वो बाबा ने जो त्याग किया उनकी कहानियां है। बच्चों के लिए बच्चों के कहने पर सुनते हुए अपराम रहे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए। आज यहाँ मधुबन में कुछ बनता है ना, किसी के लिए अच्छा टेबल आता है ना, तो भी सबको अंदर से लगता है कि उसके लिए टेबल आया, अलमारियां बनी, हमारे लिए तो कुछ नहीं बना। तो ये सब जो हम देखते हैं तो कैसा लगता है, घर से तो आ गए हैं यहाँ, सब छोड़ के भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी ये रहता है, तो उसके लिए कैसा पुरुषार्थ करे, अभी आप बताना हो हमको सब बच्चों की। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्येक जीवन में रहे। अंत में देखो उस बच्चे सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद का वैराग्य का सबूत देखा, एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों में उपराम, उसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, इमर्ज कैसे करना वो भी थोड़ा सिखाना, वो नहीं आता है। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकस की सेवा नहीं हो सकती है, फॉलो फादर करो, साकार में ब्रह्म बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टेंसेस समस्या आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है, इच्छाएं हैं, मान शान की इच्छाएं होती है, तो सब प्रकार की इच्छाएं रहती है, कोई चीजों में लगाव भी रहता है और बहुत प्रकार की बातें भी रहती है। मैंने एक बात देखी कि लच्छू दादी को मैंने देखा है, सभी डिपार्टमेंट में जाती थी वो, और उसके पास सामान बहुत रहता था, ड्राई फ्रूट भी रहता था, लेकिन उसने कभी हमने उसको ड्राई फ्रूट खाते हुए नहीं देखा। और दूसरा कि इतने सारे सामान रहता लेकिन उसकी चप्पल हमने देखी सिंपल जैसे हम पहनते थे, हमको देती थी वैसे ही चप्पल पहनती थी वो। उनके जीवन में हमने देखा इतना सारा स्टोर, हमने बोला दादी इतना सारा है अच्छा अच्छा पहनन, बोला तुम चुप रहो, ऐसा मुझे कहती थी, नहीं नहीं तुम चुप रहो। और हम दादी के पास गए तो दादी को ऐसी चप्पल दी थी जो हम सबको देते थे, तो मैंने एक बार पहन के देखी ना तो चुपती थी, तो मैंने उसको देखा कि दादी जी को तुम अच्छी चप्पल देनी चाहिए, तो मुझे कहती सबको हम समान रखते हैं, दादी जी को चुपती नहीं पूछो उसको, दादी को चुपती क्यों नहीं, मेरे को चुपती है, दादी जी के नहीं नहीं ठीक है लच्छू ने मुझे ठीक ही दिया है, मतलब इतनी बड़ी बात है। उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना पाँव पाँव पक पक पर उनका तपस्या और उनका जीवन कैसा है। तो मैंने लच्छू दादी को बोला कि मुझे तो अच्छी चप्पल देना, मुझे ऐसी जैसी, बोला तुम देखो मुझे कहती है ऐसी चप्पल जो लेनी हो यहाँ ले, बाकी तो हम दूसरी नहीं देंगे। एक बार छाता खो गई तो मैंने बोला अभी छाता खो गई, बोला तुम संभालो, संभालना नहीं आता है मैं नहीं दूंगी। तो मतलब इतना जो यज्ञ में जो इकोनॉमी होती है ना, अगर वो सीखनी हो ना तो लच्छू दादी से सीखो। मतलब कि सभी को अभ्यास है कि भले वो लगता था कि ये, लेकिन अंदर से इतनी साफ थी, इतनी अच्छी थी, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं हो जहाँ नहीं पहुंची वो, दिन में सारे चक्कर लगाती थी वो। और कभी मैंने बोला दादी अभी इतने बड़े हो ना तो आप ऐसा करो ना गाड़ी ले लोगे ना तो मैं उसके साथ चल, तुम मुझे क्या कहती नहीं नहीं तुम जाओगी मुझे साथ में ले जाना। मतलब इतना बड़े होते हुए भी कितना इसमें कितनी निर्माणता थी। मुझे ऐसा कहती मैं वो लाइट का जो प्रोग्राम होता ना स्कूल में, एक बार मैं गई तो मुझे बोले मुझे साथ में ले जाना, खुद आप बोलोगे आप स्टोरी बोलना, तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं आता है। फिर मैं वहां जाके बोला कि अभी हमारी ये दादी है ना स्टोरी बताई, फिर दादी ने स्टोरी बताई, फिर मुझे बोला मैं तो मैं हमेशा ले जाना हूँ मैं सुनाऊंगी। तो मैं कितने बच्चे कैसे, मतलब कि इतने सरलता और कितने अच्छे लोगों के साथ, मतलब कि वो तो उसमें कितनी वैराग्य रुचि थी कि उसके कमरा आपने देखा होगा ना, तो यशू दादी वहां सोती थी और बाहर में उसको सुलाते थे, उसमें एक ही कबोर्ड था, एक कबोर्ड में उसके सब साधन रहते थे। कभी उसको ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं दूसरा, मेरे को दादी अब दूसरा नहीं नहीं ठीक है मेरा बहुत अच्छा है, कभी उसको ऐसी प्रकार की इच्छा नहीं होती थी। और कपड़े नहीं लेती थी वो, मैंने देखा कपड़े नहीं, मैं क्यों कहती है इतने कपड़े हैं ना वो अभी यूज हो जाएंगे जब तक हम जियेंगे तब तक काम में आ जाएगा, इतना तो लेती नहीं थी। और मैं बोलूं देखो ये आप ये कपड़े पहन कितने पुराने लगते, बोला नहीं नहीं आज ही निकाले नए हैं। तो उनका मैंने देखा कि कोई भी प्रकार की इच्छाएं इस प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती थी, तो वंडर लगता था कितना सारा होते हुए। तो हम यहाँ आने के बाद मुझे पता पड़ा कि यशू दादी वो लच्छू दादी की बहन है, इतना उनका साथ में रहते हुए भी इतना भी कांटेक्ट नहीं रहता था, इतना भी हमें मालूम नहीं पड़ता था, जबकि आज तो उनको मालूम पड़ता है कौन कौन किस किस का है मालूम पड़ जाता है, लेकिन उस समय इतना नहीं पता पड़ता था। तो
छोड़ने के बाद पता चला, थोड़ी छोड़ने के बाद पता चला यशू दादी। अरे
और यशू दादी भी आप देखो ना, तो मैं बैठी की अभी लच्छू दादी को कहेगी बैठ जा, लेकिन दादी बिल्कुल यशू दादी देखती ही नहीं थी उनके सर। तो मतलब कि इतना होते हुए भी किस प्रकार का बाबा ने उनको पाठ पढ़ाया, वंडरफुल है। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव तो बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव तो बहुत है, कई बच्चे तो लगाव को समझते ही नहीं कि लगाव है, समझते तो होता ही रहता है तो चलता ही रहता है, मुक्त तो होना ही नहीं है लेकिन ऐसे चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने ही नहीं देते, अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की सूक्ष्म बंधन, अनेक प्रकार की मानसन की जो भी इच्छाएं हैं, अंदर की जो भी इच्छा है वो भी हमको ऊपर उठने नहीं देती है। कहते सकाश तो क्या सकाश दे, सकाश देने बैठे कोई चीज देखी, कोई व्यक्ति देखा तो अंदर से मन तो हिलने लग गया, सकाश कहाँ आई अपनी, सकाश देने की बात बहुत बड़ी है। एक संकल्प भी अगर आया, हमारा किसी से कुछ अनबन हो गया समझो, और हम योग में बैठे हैं और व्यक्ति वहां से पास हो गई, तो भले हमने देखा, हमने अपने को ऐसे बना लिया कुछ हमको मालूम नहीं, लेकिन अंदर से हलचल जरूर होती है। तो वो जो चीजें हैं, वो स्थिति है हमारी, वो हमको उठने कहाँ देती है, तो कितना बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, तो मुझे लगता बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए तो। लेकिन ऐसा मत समझिए, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं लेकिन बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस ही नहीं है। चाहना ज्यादा है कि हम फरिश्ता बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, आज हमको जो होमवर्क मिला फटाफट कर देंगे, लेकिन पता नहीं मेहनत करते हैं लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है। ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है कि करना ही है, बीच बीच में इमर्ज हो जाती है फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे, पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है लेकिन सूक्ष्म लगाव के लगाव में बन जाते हैं। तो अभी समय प्रमाण लगाओ, मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह तो अल्पकाल का होता है। अभी चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें तो अभी खत्म हो गई लेकिन सूक्ष्म लगाव की बातें तो अभी है। ओम शांति।